लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि वर्तमान युग के परिवारों को प्रेम, सम्मान और मार्गदर्शन मिलता रहे तथा वे दिन ब दिन अपने विश्वास में विकसित होते जाएं। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज, एक अध्ययन, भक्तिगीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, जुलाई के महीने में संत पापा फ्रांसिस अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह को स्थगित रखते हैं। अतः हम धर्म सभा 2018 के अतीत युवाओं और विश्व की सारी कलीसिया के नाम उनके प्रेरितिक पत्र क्रिस्तुस विवित अर्थात यीशु ख्रिस्त जीवित हैं पर एक चर्चा कर रहे हैं। आज हम क्रिस्तुस विवित के 6वें अध्याय के अंतिम भाग की चर्चा करते हुए 7वें अध्याय युवाओं की प्रेरिताई में प्रवेश करेंगे। प्रेम जो अपने में उदार है और जो अपने को स्वयं से बाहर ले जाता है, जोखिम उठाता और अपने को कार्यों में संलग्न करता है, वह कभी गलतियों का शिकार हो सकता है। यहाँ हम मरिया गैब्रिएला पेरिना के साक्ष्य को पाते हैं, जिसने अपने जन्म के तुरंत बाद ही अपने पिता को खो दिया। वह अपने जीवन का चिंतन करती है कि इस घटना ने कैसे उसके जीवन को प्रभावित किया। एक पारिवारिक संबंध जो अपने में अधिक लंबा नहीं रहा, जहां वह अपनी माता और एक दादी के साथ छूट गई। मैं यह जानती हूं कि ईश्वर हमारे लिए कहानियों को लिखते हैं। अपनी विद्वता और करुणा में वे हमारे जीवन की जीत और हमारी हार को लेते और उनके द्वारा एक सुंदर कढ़ाई बुनाई करते जो विडंबना से भरी होती है। ईश्वर के द्वारा धागों से किया गया कार्य हमारे लिए भद्दा और उलझा हुआ लगता है, विशेषकर हमारे जीवन की घटनाएं जब हम अपने जीवन की बातों को लेकर संदेह और दुविधा की स्थिति में पड़ जाते हैं, जिन्हें हम उल्टा देखते हैं। लेकिन ईश्वर के द्वारा कढ़ाई किया गया सही दिशा अपने में अति सुंदर होता है और ईश्वर हमारे जीवन की बातों और घटनाओं को उसी रूप में देखते हैं। जब बुजुर्ग जन जीवन को अति निकट से देखते, बहुधा वे स्वतः अपने में इस बात का एहसास करते हैं कि सारे उलझे धागों के पीछे वे उन बातों को पहचानते हैं कि ईश्वर हमारी गलतियों के बावजूद हमारी उन गलतियों से सही चीजों का निर्माण कर लेते हैं। यदि हम युवाओं और बुजुर्गों के रूप में एक साथ मिलकर चलते हैं तो हम अपने वर्तमान में सुदृढ़ बने रहते हैं। यह हमें अतीत की ओर पुनः देखने और भविष्य की ओर निगाहें फेरने को मदद करती है। अतीत की ओर अपनी दृष्टि फेरना और इतिहास की बातों से शिक्षा लेते हुए पुराने घावों की चंगाई प्राप्त करना हमारे लिए तकलीफदायक होती है। भविष्य की ओर निगाहें फेरना हममें नए सपने उत्पन्न करता है, जो हमारे जीवन में भविष्यवाणी को सजीव बनाता और हमें आशा में बने रहने को प्रेरित करता है। एक साथ मिलकर हम एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे के हृदय में उत्साह का संचार करते, सुसमाचार के प्रकाश में हम चित्तों को प्रेरित करते, हाथों को नई शक्ति प्रदान करते हैं।
सुनो मेरे साथियों मेरी बातों को, प्यार से मिलकर रहो। सुनो मेरे साथियों मेरी बातों को, प्यार से मिलकर रहो।
जड़ें हमें अपने अतीत से जकड़कर नहीं रखती हैं, जो वर्तमान का सामना करने और नई संभावनाओं को उत्पन्न करने में रोड़ा उत्पन्न करती हों। इसके विपरीत वे हमारे लिए एक निश्चित बिंदु हैं, जहां से हम विकास करते और नई चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होते हैं। यह हमारे लिए अर्थहीन है कि हम अपने में बैठकर अतीत की बातों में एक तरस की भावना रखते हों। हमें अपनी संस्कृति को अपनी हकीकत और प्रेम में देखते हुए सुसमाचार से भरने की आवश्यकता है। हमें आज यीशु ख्रिस्त के सुसमाचार को नई सदी में घोषित करने हेतु भेजा जाता है। हमें वर्तमान समय को इसके अवसरों और जोखिम में ही, इसकी खुशी और गमों, इसकी समृद्धि और खामियों, इसकी सफलताओं और असफलताओं में ही प्रेम करने की जरूरत है। धर्म सभा के दरमियान सामोआ द्वीप समूहों के एक युवा ने कलीसिया को डोंगी की संज्ञा दी, जिसे बुजुर्ग तारों की स्थिति को देखते हुए आगे ले चलने में सहायता करते हैं, जबकि युवा उस बात की कल्पना करते हुए कि उनके आगे क्या आने वाला है, उस डोंगी को खेने का कार्य करते हैं। संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि आइए हम युवा लोगों के बारे में अपनी सोच और दृष्टि को परिष्कृत करें, जो व्यस्कों के अतीत को अर्थहीन समझते और वे व्यस्क जो युवाओं के बारे में सदैव यह विचार करते हैं कि उन्हें पता है कि युवागण अपने में किस तरह का व्यवहार करते हैं। इसके बदले हम एक साथ डोंगी में सवार होते हुए मिलकर पवित्र आत्मा की कृपा से सदैव नवीकृत एक बेहतर दुनिया की खोज करें। परंपरा से चली आ रही युवा प्रेरिताई के कार्य अपने में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कारण अति विशेष रूप से प्रभावित हुए हैं। युवा हमारे सामान्य और यथावत कार्यक्रमों में अपने जीवन की बातों, जरूरतों, तकलीफों और विषय वस्तुओं के संबंध में निरंतर एक तरह से प्रतिउत्तर का अभाव पाते हैं। मुख्य रूप से युवाओं से जुड़े समूहों, समुदायों और विशेष दलों का प्रचार प्रसार पवित्र आत्मा का काम माना जा सकता है, जो हमें लगातार नए रास्ते दिखलाते हैं। इसके बावजूद हमें इन समुदायों के द्वारा कलीसियाई प्रेरित कार्य में सहभागिता को देखने की जरूरत है, जिससे एक बेहतर सामुदायिकता और उनके कार्यों में उचित समन्वयन हो। यद्यपि युवाओं को संचालित करना अपने में एक सहज कार्य नहीं है, और यहाँ हम दो बातों को खास रूप में बढ़ता हुआ पाते हैं। इस बात का अनुभव कि पूरे समुदाय को सुसमाचार की इस प्रेरिताई में संलग्न होना है, और यह अति आवश्यक है कि युवा प्रेरिताई कार्यों में बढ़ चढ़कर सहभागी हों।
ईश्वर को पहचान लो, उसको जान लो। सुनो मेरे साथियों, मेरी बातों को प्यार से मिल कर रहो।
संत पापा फ्रांसिस कहते हैं कि मैं युवाओं को स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, वे स्वयं अपने में प्रेरिताई के माध्यम हैं। हमें निश्चित रूप में उन्हें सहायता और दिशा निर्देश देने की आवश्यकता है, लेकिन वहीं हमें उन्हें स्वतंत्र छोड़ देने की जरूरत है, जिससे वे अपने में नए प्रारूपों का विकास सकारात्मक और एक निश्चित साहस में कर सकें। मैं यहाँ युवाओं के लिए किसी तरह का दिशा निर्देश या उनके संबंध में प्रेरिताई कार्यों हेतु कोई नियमावली प्रस्तुत नहीं करना चाहूँगा। मैं उनसे यही चाह रखता हूँ कि वे स्वयं अपनी सोच, विचारों, विद्वता और ज्ञान का उपयोग करते हुए अपने ही शब्दों में युवाओं की तकलीफों और अपनी समस्याओं को व्यक्त करें। युवा हमें नए जीवन शैली और नई रणनीतियों को तैयार करने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए, व्यस्क अपने में इस बात की चिंता करते हैं कि जीवन की सारी चीजें अपने में व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से निश्चित समय में संगोष्ठियों के आधार पर हो। वहीं युवा प्रेरिताई के संबंध में ऐसी बातें वर्तमान समय में बहुत कम रुचिकर होती हैं। युवा प्रेरिताई अपने में अधिक लोचक होने की मांग करती है, जहां हम युवाओं को कुछ अवसरों या कार्यक्रमों में बुलाते जो उन्हें न केवल सीखने हेतु एक समय प्रदान करती, बल्कि उस परिस्थिति में वे एक दूसरे के साथ वार्ता करते, जीवन का आनंद उठाते, गाती बजाते, दूसरों के जीवन की सच्ची कहानियों को सुनते और ईश्वर के साथ अपने साक्षात्कार को एक दूसरे के संग साझा करते हैं।
सुनो मेरे साथियों, मेरी बातों को प्यार से मिल कर रहो। वही तो हमारे दिल की खुशी है, वही तो हमारे दिल की प्यास है, वही तो हमारे दिल की खुशी है, वही तो हमारे दिल की प्यास है। उसके लिए सबसे प्यार करो, उसके लिए सबसे प्यार करो। सुनो मेरे साथियों मेरी बातों को, प्यार से मिल कर रहो। सुनो मेरे साथियों मेरी बातों को, प्यार से मिल कर रहो। किए हैं बीमारों को चंगा किया है, ईश्वर ने कई कार्य किए हैं बीमारों को चंगा किया है। उसने मुर्दों को जीवन दिया है, उसने मुर्दों को जीवन दिया है। सुनो मेरे साथियों मेरी बातों को, प्यार से मिलकर।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने ब्राजील के कैंपनाहा डी माराबा अस्पताल में एक वेंटिलेटर दान किया। दक्षिण अमेरिकी देश में कोविड 19 वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। एक वीडियो में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए माराब के धर्माध्यक्ष वाइटल कोर्बेलिनी ने कहा कि यह प्रेरितिक राजदूत के माध्यम से संत पापा फ्रांसिस की एक सुंदर उदार क्रिया है। धर्माध्यक्ष कार्बोलिनी ने वाटिकन न्यूज को बताया कि इसका उपयोग विशेष रूप से आदिवासी लोगों के लिए किया जा रहा है, जिसे इसकी सबसे जरूरत है। संत पापा द्वारा ब्राजील भेजे गए चार में से एक वेंटिलेटर और थर्मामीटर रविवार को मारबा में पहुंचा। धर्माध्यक्ष कार्बोलिनी ने सोमवार 13 जुलाई को एक छोटे समारोह के दौरान उन्हें स्वास्थ्य विभाग के समन्वयक को दिया। पारा के अस्पताल में आदिवासी कोविड 19 रोगियों के 10 बेड आरक्षित हैं। धर्माध्यक्ष ने कहा, संत पापा फ्रांसिस आदिवासियों की विशेष परवाह करते हैं, सरकार भी उनकी परवाह नहीं करती। उन्होंने कहा कि अब हमारे पास यह उपकरण है जो उनके जीवन को बचाने में मदद कर सकती है। उधर स्कॉटलैंड में कोविड 19 संकट के कारण लगाए गए प्रतिबंधों में अब ढील दे दी गई है और 15 जुलाई से सभी गिरजाघरों में पवित्र मिसा संपन्न किए जा सकते हैं। स्कॉटलैंड के कैथोलिक धर्माध्यक्षों ने सरकार द्वारा बुधवार 15 जुलाई से गिरजाघरों में सामूहिक मिसा समारोह को फिर से शुरू करने की अनुमति का स्वागत किया है। 9 जुलाई को स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन ने कोविड 19 संकट के कारण लगाए गए प्रतिबंधों को शिथिल करने की घोषणा की। स्कॉटलैंड में महामारी के दूसरे चरण में प्रतिबंधों की छूट के रूप में गिरजाघरों में निजी प्रार्थनाओं के लिए मध्य जून में आंशिक रूप से खोल दिया गया था। हालांकि सांप्रदायिक पूजन विधियों पर प्रतिबंध लगा था। नवीनतम कदम पर टिप्पणी करते हुए स्कॉटलैंड धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष धर्माध्यक्ष ह्यू गिलबर्ट ने कहा, पिछले महीने से हमारी पल्लियां मिस्या समारोह के लिए तैयारी कर रही हैं। मिस्या समारोह कलीसियाई जीवन का केंद्र है। गिरजाघरों में सांप्रदायिक प्रार्थना की अनुमति है, लेकिन वहां अभी भी प्रतिबंधों का पालन किया जाना जरूरी है। गिरजाघरों में विश्वासियों को शारीरिक दूरी बनाए रखना है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को छोड़कर सभी को मास्क पहनना जरूरी है। गिरजाघरों में अधिकतम उपस्थिति 50 लोगों तक सीमित है और पल्लियों को उपस्थित लोगों के नाम और संपर्क जानकारी दर्ज करनी होगी। उनका पल्लियों में स्वागत है। उधर म्यांमार में विभिन्न धर्मों के नेताओं ने राष्ट्र के नेताओं और विश्वासियों से अपील की है कि वे सम्मान के साथ एक दूसरे की सुने, आंतरिक संघर्षों को समाप्त करें और सभी की भलाई के लिए काम करें। विभिन्न धर्मों के 40 नेताओं ने आगामी चुनाव के मद्देनजर सोमवार 13 जुलाई को एक बयान जारी कर म्यांमार के नागरिकों, सशस्त्र समूहों, राजनीतिक दलों और धार्मिक नेताओं से अपील की। म्यांमार के धार्मिक नेताओं का बयान आने वाले 8 नवंबर के राष्ट्रीय चुनाव और 21वीं सदी के पंगलोंग सम्मेलन के पहले आता है, जो देश के विभिन्न जातीय समूहों को एक साथ लाकर संघर्ष को समाप्त करने और स्थानीय समाधान पर बातचीत करना चाहते हैं। बौद्ध, ईसाई, मुस्लिम, हिंदू समुदायों के प्रतिनिधि, साथ ही म्यांमार के RFP धर्म समूह के सदस्य और अन्य जिन्होंने अपील पर हस्ताक्षर किया है, वे चुनाव और पांगलोंग के सम्मेलन को राष्ट्र के कल्याण का एक सुनहरा अवसर मानते हैं। उनका कहना है कि हम म्यांमार के सभी नेताओं और अपने साथी धर्म गुरुओं से सम्मान के साथ एक दूसरे को सुनने की अपील करते हैं और सभी का भला करने की ठान लेते हैं। अपील में हस्ताक्षर करने वालों में एशिया धर्माध्यक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष यांगून के कार्डिनल चार्ल्स बो सहित 15 से अधिक धर्माध्यक्ष और कलीसिया के वरिष्ठ लोक धर्मी शामिल हैं। नेताओं ने विशेष रूप से राष्ट्र के कोविड-19 महामारी, पर्यावरणीय खतरों और जातीय विभाजन एवं संघर्षों के संकट की ओर इशारा किया है। उन्होंने दुख प्रकट करते हुए कहा कि देश में विविधता की सुंदरता के बावजूद लोग जातीय मतभेदों में अपना ऊंचा स्थान संभालने की मूर्खता से चिपके हुए हैं और एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जबकि विदेशी जमीन के धन, सोने, सागौन की लकड़ी और जेट को ले जा रहे हैं। धर्म गुरु कमजोर शांति समझौते की निंदा करते हुए कहते हैं कि देश के जंगलों और धन को लूटने से यह शांति समझौता रोक नहीं सकती। नागर नेताओं को आशा में निवेश करने और महामारी के बाद देश को भविष्य के लिए तैयार करने की आवश्यकता है। और UCF के अध्यक्ष माइकल विलियम्स ने 13 जुलाई को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, किसी को भी उनके विश्वास के कारण सताया नहीं जाना चाहिए। भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के इन संकेतों के बाद भी यह भयावह जनतंत्र कार्यों को देखना चिंताजनक है। भारत में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा रुकती नहीं है, यहाँ तक कि कोरोना वायरस महामारी के प्रसार और राष्ट्रीय स्तर पर लगाए गए अलगाव ईसाइयों को राहत पहुंचाने में कामयाब नहीं हो सकी। नई दिल्ली में यूनाइटेड क्रिश्चियन फोरम UCF, जो मुख्य रूप से विरोध के माध्यम से ईसाई अल्पसंख्यकों के अधिकारों के लिए लड़ती है, 6 मासिक रिपोर्ट के अनुसार 15 राज्यों में 121 हिंसा की रिपोर्ट मिली, जिनमें 2 लोगों की जाने गई और 95 हमले दर्ज किए गए थे। UCF के अध्यक्ष माइकल ने 13 जुलाई को जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि UCF अलायंस डिफेंडिंग फ्रीडम इंडिया EFI के धार्मिक स्वतंत्रता आयोग और क्रिश्चियन लीगल एसोसिएशन के साथ मिलकर 19 गिरजाघरों को फिर से खोलने और 28 पल्ली पुरोहितों व पादरियों को जमानत पर रिहा करने या झूठे आरोपों से बरी करने में कामयाब रहा। माइकल ने कहा, यह अब केवल विश्वास के बारे में नहीं है, यह एक सम्मानजनक जीवन जीने, शांतिपूर्ण जीवन जीने और दूसरों को जीवन देने के संवैधानिक अधिकार के बारे में है। UCF, जिसका मुख्य उद्देश्य मानव अधिकारों से लड़ना है, इसके लिए लड़ता रहेगा। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।